5 June 1978.
इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हमें आप इस प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि प्रदान करें कि जिस बुद्धि के द्वारा हम अपने स्वरूप को और आपके स्वरूप को जान सकें, ऐसी बुद्धि के लिए इसमें प्रार्थना की गई। फिर जो प्रजापति प्रजा का सृजन करने वाले हैं इंद्र और वायु, ये देवता भी सहकारी होते हैं, तो ये सब देवता हमें अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करें जिससे कि हम भवपाश से मुक्त होकर के सदा के लिए सुखी हो जाएं। भगवान को ऐसा मान लेने कि वो भी बुद्धि प्रदान नहीं करता है, ऐसी शंका हो सकती है। यदि वो बुद्धि प्रदान न भी करता हो, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, वो उस चेतन सत्ता में घुल मिल करके और फल के रूप में परिणित होकर के वापिस आ जाती है। हम बहुत वर्ष में ऋषिकेश में एक पहाड़ ऐसा है, उसका नाम उसको कहते हैं वसुधारा। ऋषिकेश में सामने जहां झाड़ी है, तो हम वहां छोटे से कहा करते थे वसुधारा लड्डू खाएगी पेड़ा, तो वहां से पेड़े की आवाज आया करती थी। अभी तुम कभी जाओगे ऋषिकेश में, ऐसे ही शब्द बोलना, वसुधारा लड्डू खाएगी पेड़ा, तो पेड़े की आवाज आती है वहां से दूर करके। तो इसी प्रकार हमारे जो शब्द हैं प्रार्थना के, ये भी भगवान में जाकर के शुद्ध पवित्र होकर के और हमारे लिए फल का हेतु बनते हैं, शांति का हेतु बनते हैं, बुद्धि की तीक्ष्णता का हेतु बनते हैं। भले वो फल भी प्रदान में करता हो, करता भी न हो, परंतु क्योंकि शब्द की जो भावनाएं हैं वो चेतन में ओतप्रोत होकर के पवित्र होकर के फल के रूप में आ जाते हैं। हुआ कभी निष्फल नहीं जाता, किसी भी प्रकार का कर्म करो, अच्छा करो या बुरा करो, बुरे का फल बुरा मिल जाता है और अच्छे का फल अच्छा मिल जाता है। अब जैसे आप रोटी बनाने बैठे हैं, अब आप बनाएंगे पुलाव, तो उसके बनाने का फल हमें पुलाव ही तो मिलेगा ना, और कोई चीज तो नहीं मिल जाएगी। रोटी बनाएंगे चपाती, उसके बनाने का उस कर्म का फल चपाती तो बनेगा ना, हमारा पेट भरेगा। हम मिठाई बनाएंगे, उस कर्म का फल हमें मिठाई तो मिलेगा। तो इसी प्रकार ये जो आप अब कर्म कर रहे हो, योगाभ्यास में बैठ करके ध्यान और समाधि में आत्मा और परमात्मा का चिंतन करते हो, ये तुम्हारा कर्म निष्फल नहीं। परमात्मा के यहाँ, कुदरत के यहाँ देर तो हो जाती है, परंतु अंधेर नहीं होता है, फल जरूर मिलता है। अगर उसके यहाँ भी मान लेने कि भगवान के यहाँ भी अंधेर है, वो फल नहीं देता, तब फिर क्या करना चाहिए? फिर कर्म के फल को लेने के लिए देश, काल, निमित्त और सामग्री, चार चीजें पैदा करनी चाहिए पुरुषार्थ के। तो ये चार चीजों के द्वारा आपके कर्म का फल मिल जाएगा। भगवान को मानोगे तद भी मिल जाएगा, नहीं मानोगे तद भी देश काल निमित्त सामग्री के द्वारा आपके कर्म का फल मिल जाएगा। तो जो ये भक्ति, उपासना, साधना, योगाभ्यास, मेडिटेशन आदि कर्म कर रहे हो, ये निष्फल नहीं जाएगा, फल वाला होगा। अगर मन की शांति के लिए करते हो तो मन की शांति प्राप्त होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हो तो आत्मज्ञान भी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हो तो वो भी जरूर मिलेगा, कर्म किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा। तो इसलिए कुर्वण्ये दे कर्माणि जिजीविषे क्षतगम समा एवं तय नाम्यते तो अस्ति न कर्म इत्यादि। कर्म करते चले जाओ निष्काम भाव से, जो कोई कर्म करो भगवान के समर्पण कर दो, तो उसे फिर भगवान के समर्पण किए हुए कर्म फल तो तब भी मिलेगा, पर तुम्हारी उदारता श्रद्धा भक्ति प्रीति भगवान के लिए जाहिर हो जाएगी, तुम्हारे अंतःकरण की भावनाएं प्रकट हो जाएंगी किस प्रकार की पवित्र भावना के द्वारा भगवान के समर्पण किया है, तो समर्पण का फल भी उसे मिलता है जो समाधि के द्वारा भक्ति आदि के द्वारा ध्यान ज्ञान आदि के द्वारा मिलता है, समर्पण के द्वारा भी उसे फल मिलता है, मन की शांति आनंद हर्ष आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति, जिनसे मस्तिष्क के अंदर ब्रह्म रंध्र के अंदर आपका अभ्यास चल रहा है आत्मा की खोज के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए कि हमारा स्वरूप क्या है, तो आप ध्यान के द्वारा जब ब्रह्म रंध्र में प्रवेश करते हैं तो वहां इस प्रकार की वाइब्रेशन सी ऐसे कंपन से कुछ सूक्ष्म सी ज्योति के या प्रकाश के ऐसे कंपन से नजर आने लगते हैं, इस तरह गतिविधि सी होने लगती है। तो ये जो हमारा एक होता श्रवण, एक होता मनन, दूसरा होता निरध्यासन, तीसरा होता साक्षात्कार, तो जैसे अब सुन रहे श्रवण, अब फिर उसी आत्मा के विषय में आप मनन करोगे, फिर उसका निरध्यासन करोगे, उसकी गोया खोज करोगे, चिंतन करोगे, सोचोगे, समझोगे, तो इस प्रकार वहां ऐसे कंपन से गोया जैसे हर वक्त इस तरह कंपन से नजर आने लगते हैं, तो ये बुद्धि और मन का जो चिंतन रूप व्यापार है, आत्मा की खोज के रूप में जो व्यापार है, वो व्यवहार वहां इस प्रकार सा लगने लगता है। तो इसमें अगर तुम थोड़ा सा वो जो वाइब्रेशनें सी उठ रही हैं उनमें नीचे की ओर को झांक करके देखोगे तो उनके अंदर आपको दिव्य ज्योति आत्मा की प्रकाश रूप से अनुभव न आने लगेगी, क्योंकि वहां मन और बुद्धि भी उस वक्त थोड़े से मध्यम से प्रकाश वाले हैं, तो वहां चेतन सत्ता भी उनके दो बट चूल्हे के ऊपर स्टोव के ऊपर एक बटलोई रखो, उसमें पानी रखो और उस पानी में कोई चीज आप पकाने के लिए डाल दो, तो जैसे कोई सब्जी है पतली कोई हल्की सब्जी है पत्तों वाली सब्जी है कोई है, तो उबल उबल करके पानी में ऊपर आने लगती है, जब उसकी गर्मी पैदा होती है हीट पैदा होती है तो उबल उबल करके उसमें पाक रूप धर्म होने लगता है। तो इसी प्रकार मेडिटेशन के द्वारा वहां चेतन सत्ता जो है वो कंपायमान सी होकर के बुद्धि में तरंगित सी होने लगती है, जैसे जल के अंदर कोई चीज मछली या कोई और चीज पड़ी हो तरंगित सी होने लगती है, या जल के ऊपर कोई चीज तरंगें हो रही है हवा से और वो हल्की चीज उस पर तैरती हुई चल रही है, तो इसी प्रकार बुद्धि के मंडल में तुम्हें चेतन सत्ता तैरती हुई सी तद्रूप भी और भिन्न रूप वाली भी प्रतीत होने लगेगी, तो वहां दो चीजों की प्रतीति होगी, एक बुद्धि की और एक उसमें व्यापक सी मिलती हुई सी तरंगित हुई सी चेतन सत्ता भिन्न रूप वाली, तद्रूप वाली भी भिन्न रूप वाली भी। तद्रूप वाली तो तब होगी क्योंकि जैसे एकांतमणि होती है जो चीज उस पर आ जाती है वैसे भासने लगती है, तब तो वो तद्रूप वाली होती है, और वैसे एकांतमणि और फूल या कलर दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, तो आत्मा की भिन्न सत्ता की भी प्रतीत हो जाएगी और उसमें व्यापक रूप से भी प्रतीति हो जाएगी बुद्धि के मंडल में। मंत्र में शांत सी स्थिति बना करके सब कुछ व्यापार से बंद कर करके इसको शिथिल सा बना देने, मन को शांत सा कर देने और मन और बुद्धि के बीच में किसी चेतन सत्ता की प्रतीक्षा में आप झांक झांक करके देखें, मन और बुद्धि के मंडल में चेतन सत्ता को जैसे कोई मुस्कराते हुए, स्नेह से, प्यार से, प्रसन्नता से, हर्ष से किसी को झांक करके देखा करता है, तो उस चेतन सत्ता को दोनों मन और बुद्धि के सेंटर में झांक करके ध्यान के द्वारा, गहरी समाधि के द्वारा झांक करके देखने की कोशिश करो, तब तुम्हें ठीक रूप से आत्मा का या अपने स्वरूप का भास होने लगेगा। दिन आ जाता है, 3 मिनट तक मैं इंद्रियों के और मन के विषयों से रहित होकर बैठ जाऊं तो यह एक प्रकार से प्रत्याहार की स्थिति प्रथम रूप होगा, और 3 मिनट तक मेरा प्राणायाम प्राण रुक जाए तो ये प्राण की सिद्धि कहलाती है। तो इसलिए योग के इनको अंग माना है। प्राणायाम की बात, इसलिए प्राणायाम को क्यों इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि प्राणायाम से एक तो शरीर के विकार दूर होते हैं, शरीर की नस नाड़ियां आदि जो हैं इनकी शुद्धि होती है प्राणायाम से। ये प्राणायाम की एक प्रकार से एक्सरसाइज है, जैसे सारे शरीर की दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज है, ऐसे ये भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज भी मैंने 60-70 प्रकार के अपने ग्रंथों में लिख दी। तो इस एक्सरसाइज से तो प्राण बलवान होता है, क्योंकि समाधि की स्थिति में प्राण को भी विक्षेप का हेतु माना है। दुख दौर मनस्य अंग ने जत श्वास प्रश्वास विक्षेपा से हुआ, 5 प्रकार के विक्षेपों में प्राण का विक्षेप माना गया है। तो इसलिए, क्योंकि मुझे भी कभी कभी मैं ऐसा ध्यान करता हूँ तो मुझे ये हार्ट की धड़कन भी विक्षेप का हेतु मालूम होने लगती है, तो हार्ट की धड़कन सुनाई देने लगती है। सबको तो नहीं सुनाई देती, पर मेरी पल्स की भी धड़कन बहुत तेज है और हार्ट की भी बड़ी तेज है, तो ये धड़कन सुनाई देने लगती है। तो समाधि की स्थिति में, मन की एकाग्रता में, ये विक्षेप का हेतु मानी गई है, इसलिए प्राण को भी विक्षेप का हेतु माना। तो प्राणायाम के द्वारा प्राण को इतना सूक्ष्म बना दिया जाए कि यह विक्षेप का हेतु ना हो, क्योंकि प्राण बलपूर्वक चलता है, इसलिए हार्ट की धड़कन भी बलपूर्वक होती है। तो अभ्यास के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा प्राण को इतना सूक्ष्म बना दिया जाए, हल्का सा, कि ताकि हार्ट की धड़कन की भी, नाड़ी की धड़कन का भी पता ना चले, तब वो विक्षेप दूर होगा जो 5 प्रकार के योग के विक्षेप माने गए हैं। महत्व दिया गया है प्राणायाम को अंग, इसलिए माना है कि तत क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्राणायाम के द्वारा मस्तिष्क में जो अंधकार का पर्दा सा पड़ा हुआ होता है बुद्धि पर, अंधकार का या अविद्या का, वो आवरण हट जाता है प्राणायाम के द्वारा। जैसे सर्वद्वार बदादि प्राणायाम अगर निरंतर किया जाएगा तो अंधकार का पर्दा हट जाया करता है और ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ करता है, प्रकाश का आवरण। क्योंकि विषयों की ओर ये दौड़ता है, तूने रूप का चिंतन करे रूप की तरफ जाए, न शब्द का चिंतन करे न शब्दों की तरफ जाए, न गंध का चिंतन करे गंधयुक्त पदार्थ।